आचार्य भगवान लिखित जो समय सार है, उस समय सार के हम निर्जरा अधिकार को आज शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रवचन रत्नाकर भाग 7 की शुरुआत है। यहाँ हम पृष्ठ क्रमांक 1 पर आए हुए हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार ऊपर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ना प्रवचनों श्रीमद् अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति ही निर्जरा अधिकार अथ प्रविशति निर्जरा।
यानी यहाँ अभी निर्जरा प्रवेश करते, ये रंगभूमि की उपमा दी है ना। जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार आदि हमने देखे थे, तभी यहाँ निर्जरा अधिकार प्रारंभ होता है। तो उसके पहले अमृतचंद्राचार्य ने गाथा शुरू करने के पहले टीकाकार अमृतचंद्राचार्य श्लोक लिखते हैं। वे स्वयं उस अधिकार का मंगलाचरण रूप श्लोक कहेंगे और बाद में मूल जो कुंदकुंदाचार्य ने गाथा बताई है उसको लिखेंगे, क्योंकि टीका जो है तो गाथाओं के पहले भी कुछ लिखते हैं और बाद में, क्योंकि स्पष्टीकरण रूप से आती है ना ये। तो यहाँ पहले श्लोक पढ़ेंगे हम इसका। रागाद्याश्रवरोधतो निजदुरां धृत्वा परसंवर कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान् निरुन्धन्स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निजरा ज्ञानज्योतिरपावृतं नहि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति। इसका अर्थ देखते हैं,
ये भी पढ़ लो ना। रागादिना हाँ।
रागादिकना रोधति नवो बंद हणि संत पूर्व उदयमा समरहे नमो निर्जरावंत। क्या कहते हैं, रागादिक के रोध से यानी अभी उसका अभाव हो गया है, यानी हमने देखा था ना संवर हुआ है, रागादि का रोध हुआ है, यानी क्या हुआ है, संवर हुआ है, रुक गए ना वो। हमने पहले देखा था, पहली गाथाओं में संवर अधिकार में देखा था, राग द्वेष मोह का अभाव हुआ है तो उसके कारण नए कर्मों का बंध रुक जाएगा, तो उसको संवर कहा था। तो उसके कारण नवो बंध हणि संत, नवा बंध जो है उसका तो नाश हुआ है, यानी अभी नया बंध तो नहीं हो रहा है, तो क्या इतने मात्र से चलेगा काम, क्या और भी कुछ वहाँ हो रहा है। तो कहते हैं, पूर्व उदयमा समरहे नमो निर्जरावंत, परंतु पूर्वबद्ध जो कर्म है उसके अभी निर्जरा चल रही है।
ये किनकी बात चल रही, संत यानी मुनियों की बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये मुनियों ने क्या किया है कि पहले तो संवर किया था तो उसके कारण से तो नए राग द्वेष नहीं हो रहे थे और नया कर्म भी बंद नहीं रहा था, बंद नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नवे बंद को हना हना यानी नाश किया उनका। और क्या कहते हैं, इतना ही करने से वो नहीं रुके हैं, तो कहते जो पूर्व कर्म जो जो उदय में आ रहे हैं उसमें उन्होंने समता वृत्ति रखी है, समभाव रखा है, और इनके इसके कारण से उनके निर्जरा भी चल रही है। ऐसे निर्जरावंत ऐसे जो संत महंत है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा यहाँ जयचंद जी छावड़ा का ये है।
क्योंकि ये जो अभी श्लोक पढ़ा ना हमने संस्कृत में, उसी के उसका जो उसमें जो भाव आया है उसी को यहाँ हिंदी में उन्होंने बता दिया
सारभूत बात वहाँ।
क्योंकि ऊपर भी जो तीसरी लाइन में क्या लिखा था, प्राग्बद्धम तू प्राग्बद्धम, प्राक यानी पूर्व में बंधा हुआ, पहले में पहले कहते कि रागादि आश्रवों का निरोध होने के कारण संवर हुआ है, संवर हुआ है ने कर्मों का विशिष्ट कर्मों का बंध रुक गया है, परंतु वो बंध रुकने के पहले बंधे हुए थे उनका क्या होगा, तो उसकी बात है, उसकी तो निर्जरा हो रही है, वो बात अभी यहाँ बताएंगे। पहले हम ये तीन लाइन पढ़ेंगे। प्रथम टीकाकार आचार्य महाराज कहे छे के, क्या नाम है इनका टीकाकार आचार्य महाराज का, अमृत चंद्राचार्य। हवे निर्जरा प्रवेश करे छे, अहीं तत्वोनुं नृत्य छे, ये रंगभूमि की उपमा है, और तत्व वहां अखाड़े में ने रंगभूमि पर प्रवेश करके नाच दिखा रहे हैं।
तो एक्चुअली ये नाच नहीं है, ये तो वहाँ कोई नृत्य भी नहीं कहो, हाँ स्वांग करके आया है, और जो कुछ वो रिले करेगा मतलब जो उनकी बात होगी वो ये नृत्य करेगा, ये तो कहने की बात है, यानी तो आप समझेंगे कोई डांस वांस चलता होगा, वैसा कुछ नहीं।
यानी रंगभूमि पर जैसे पहले होते थे कोई कथानक है नृत्य के माफक वो भी प्रस्तुत करते थे, वैसे भी हो सकता है, या फिर कोई स्वांग लेके आया, इस तरह से भी ले सकते उसको। तेथी जेम नृत्य ना अखाड़ा मा, ये अखाड़ा तो हमने कल वो कुश्ती का सुना है, उसकी बात नहीं है, अखाड़े ने रंगमंच जिसको कहते हैं
स्टेज।
नृत्य ना अखाड़ा मा नृत्य करनार स्वांग धारण करीने प्रवेश करे छे, हमने वो देखा है, वो तो राम रावण के स्वांग धारण करके वो कुछ एक्टिंग करते हैं ना, कोई पूरा ही जो स्टोरी है वो नृत्य के माफक उसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ ऐसा कहते हैं स्वांग धारण करीने प्रवेश करे छे तेम, ये तो उदाहरण दिया दृष्टांत दिया, अहीं रंगभूमि मां निर्जरानो स्वांग प्रवेश करे छे। देखो ये सभी स्वांग बताए हैं, पर्याय रूप है ना, अवस्थाएं है। हवे सर्व स्वांग ने यथार्थ जानना रुजे सम्यक ज्ञान छे, स्वांग को स्वांग रूप से जो जैसा है उसको वैसा जानने वाला कौन है, तो सम्यक ज्ञान। जीव और अजीव को अपने अपने रूप से पहचाना, आश्रव को आश्रव रूप जाना, संवर को जाना, भी निर्जरा को भी उस स्वांग को स्वांग रूप से जो जान रहा है, तो यथार्थ जानना रू जे सम्यक ज्ञान छे तेने मंगल रूप जानीने आचार्य देव, मंगल अर्थे प्रथम तेनेज एटले निर्मल ज्ञान ज्योति ने ज प्रकट करे छे। इस श्लोक में उसको पहले सम्यक ज्ञान को यहाँ याद करके उसके मंगल स्वरूप वहाँ मंगलाचरण की रचना की है। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका श्लोकार्थ यहाँ लिखते हैं। पर संवर, परम संवर, ये कैसे प्रकट हुआ था, परम संवर, परम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट संवर कैसे प्रकट हुआ, तो कहते हैं रागादि आश्रव रोधतः, रागादि आश्रवों ने रोकवा थी। पहले ये संवर अधिकार में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है अपने। निज धुराम धृत्वा, पोतानी कार्य धुराने धारण करीने, एटले पोताना कार्य ने बराबर संभाळीने, समस्तम आगामी कर्म, समस्त आगामी कर्म ने भरतः दूरात एव, अत्यंतपने दूर थी, पहले हम पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ करेंगे। निरुंधन स्थित रोक तो उभो छे, कौन ये वाक्य का कर्ता कौन है,
परम संवर।
हाँ संवर, संवर क्या कर रहा है, कि रागादि आश्रवों को उसने रोका है और पोतानी कार्य धुराने धारण किए उसने। और क्या होता है, समस्त आगामी कर्म ने अत्यंतपने दूरथी ज रोकतो उभो छे। अत्यंतपने दूरथी रोकते ने, अभी वो आ गए और रुका है ऐसी वही, वो तो उत्पन्न ही नहीं होगे राग द्वेष मोह और नए कर्म भी नहीं आएंगे, इसलिए कहते अत्यंत दूरथी रोकतो। संवर प्रकट हुआ है तो अभी राग द्वेष भाव भी यानी भाव भावाश्रव भी नहीं है और द्रव्याश्रव भी वहां नहीं है। तू अने प्राग बद्धम, अभी तो नए तो नहीं आ रहे हैं परंतु पूर्व में ऑलरेडी जो बंधे हैं उसकी क्या बात हो गई। तो प्राग बद्धम, प्राग बद्धम एटले जे पूर्वे, पूर्वे एटले संवर थया पहला बंधायेलू कर्म छे, तत एवं दग्धुम तेने बाळवाने, दग्ध करवा माटे तेने बाळवाने अधुना एटले हवे निर्जरा व्याजृंभते। निर्जरा एटले निर्जरा रूपी अग्नि फैलाय छे, क्योंकि दग्ध करने की बात आई ना, तो दग्ध करने के लिए कौन सी अग्नि होगी, यहाँ निर्जरा रूपी अग्नि। यतः के जेथी ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति अपावृतम निरावरण थई थकी, अप आवृतम, पहले आवृत हो आवृत थी ना, अभी अपावृतम निरावरण थई थकी फरीने रागादि भी नहीं मूर्छती, रागादि भाव वड़े मूर्छित थती नथी, सदा अमूर्छित रहे छे। पहले भी संवर में भी बात आई थी, अभी ये राग द्वेष मोह का अभाव हुआ है वो फिर से दोबारा उत्पन्न नहीं होने वाला है, वहां भी ऐसी बात हुई थी ना। अब यहाँ भी क्योंकि ये ज्ञान ज्योति की महिमा कर रहे हैं, ये ज्ञान ज्योति से ये सब कुछ हुआ है, संवर भी और निर्जरा भी, इसलिए मंगलाचरण में उसको याद कर रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका? हाँ, कौन सी चार एक्टिविटी? हाँ देखो, हाँ आपका प्रश्न है, ये तो चार ही बातें हो रही है, आश्रव बंध और संवर निर्जरा हो रही है। तो यहाँ तो जब आश्रव बंध कर रहे थे तो वो मिथ्या दृष्टि को लेना, बीच वाले जो साधक की भूमिका है उसको थोड़ा गौण करके ये सब रुक गए ऐसा कहेंगे हम, या उनकी बात लेंगे तो भी जिनका आश्रव रुक गया है, जिन प्रकृति का, अभी चौथे गुण स्थान की बात करेंगे तो 41 प्रकृतियों का तो आश्रव बंध रुक गया है, उतना तो संवर हुआ है। पांचवे में जाएंगे या छठे सातवें में जाएंगे संवर और ज्यादा बढ़ गया है, संवर की यानी शुद्धि की भी वृद्धि होती है और उतने प्रकृतियों का बंध भी रुक जाता है, बढ़ता चला जाता है, साथ साथ वहां निर्जरा भी चल रही है। ऑलरेडी जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है वो तो बहुत अधिक मात्रा में निकल जाते, उसको कहते वो दग्ध हो जाते, निर्जरा के द्वारा दग्ध होते। जैसे ध्यान को भी अग्नि की उपमा दी जाती है, तो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ये कर्मों का वन जला दिया जाता है, ऐसा कहते हैं ना, ये तो कहने की पद्धति है, परंतु वहां क्या होता है एक्चुअली, असंख्यात गुणा कर्म हर समय निकलते चले जाते हैं जो ऑलरेडी बंधे थे वे, तो उसकी यहाँ ये पूरे अधिकार, ये निर्जरा अधिकार यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इसलिए यहाँ जिस ज्ञान के द्वारा ये निर्जरा हो रही है उस ज्ञान की महिमा रूप ये श्लोक है।
देखो आप जो कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ क्या लिखा जा,
हाँ उस भूमिका में जो आ रहा है वो आ रहा है, परंतु यदि वो सम्यक ज्ञान नहीं होता तो क्या होता,
और गिर जाता तो
यानी जो पॉसिबल आने वाले कर्म है उनको दूर थे, यानी वो तो आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, उसको ही कहा आगामी वालों को रोक दिया।
देखो बात ऐसी है, अभी आप जो कह रहे थे कि एक एट ए टाइम उनके आश्रव बंद संवर निर्जरा चारों ही चालू है, बिल्कुल चालू है, लेकिन बात ऐसी है जब कोई मिथ्यादृष्टि जीव होता है तो उसके जो आश्रव यानी राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं उस राग द्वेष के परिणामों का वो स्वयं को कर्ता मानता है, वो करने योग्य मानता है, वह मेरा कार्य है, कर्तृत्व है, ऐसा मानता है। अब यहाँ जो वो शब्द दिया है ना, क्या निज धुराम धृत्वा यानी पोतानी कार्य धुराने धारण करीने, यानी इनका कार्य क्या है, कि जो नए कर्म आवे उनको रोकना, ये संवर का कार्य धुरा है, यानी उसका वह कर्तृत्व है। ये तो भाई जिसको हम कहते हैं कवित्व कल्पना का हो या जो पोएटिक जो कन्विंसिंग है वो उनकी पावर वैसी है, उस तरह से वो समझा रहे। बात तो ऐसी है कि जो मिथ्या दृष्टि है उसके राग द्वेष के भी परिणाम हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, यहाँ तो मुनियों की बात ले रहे हैं, इनके भी राग द्वेष हो रहे हैं ना। अब यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि ये राग द्वेष के परिणाम जो हो रहे हैं उनके वे जानने वाले हैं, वो राग करने जो हो रहे थे उस राग का राग उनमें नहीं है, राग में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। इसका आगे जो 193 वाली जो गाथा आएगी वहां तो ये बताएंगे कि तू निर्जरा जो मतलब ये ज्ञानी की निर्जरा भी यानी ज्ञानी के भोग भी निर्जरा का हेतु है, क्योंकि वो जो कुछ खाना पीना जो कुछ भोग रहा है उसमें उनके रति मात्र भी रंच मात्र भी उसमें कोई रुचि नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो जान रहे हैं बस। तो वहां जो कोई आश्रो बंद हो रहा है उनका भी वो ज्ञाता दृष्टा है, उनमें कोई राग मतलब प्रेम नहीं है, उस राग का प्रेम नहीं है, राग में किसी प्रकार की रुचि नहीं है उनके। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके वो नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब आगे का तो ऐसे ही कहेंगे, अभी अगला तो पहली जो गाथा है उसमें तो छक्के छुड़ा दे ऐसी बात है। ये कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसके जो भोग है या उपभोग है वह तो बंध के कारण है, और जो सम्यक दृष्टि जीव है ज्ञानी है उसके उपभोग जो चल रहा है वह तो निर्जरा का हेतु है। बोले यार ऐसा क्यों यार, पार्शियलिटी क्यों? अरे पार्शियलिटी नहीं है, वो तो बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि उनको उन परिणामों में क्या बिल्कुल ऐसे उस राग का राग नहीं है, लेकिन क्या करे पहले जो कर्म बंधे थे संवर थवा पेलानी बात छे ना, तो कर्म जो बंधे थे उनका उदय आया और उस समय स्वरूप में अधिक एकाग्रता न हो रही है, अस्थिरता का राग चल रहा है, लेकिन उस राग का राग नहीं है, इसलिए उन वस्तुओं को भोगते हुए भी वो नहीं भोग रहे ऐसा कहेंगे, और वह निर्जरा का कारण कहेंगे। यानी आपने जो चारों बातों को बात उठाई ना वो है। अभी यहाँ तो इन्होंने जो कहा बिल्कुल वैसे ही है कि वही उसको गौण करके यहाँ बात बता रहे हैं। यहाँ तो क्या सिर्फ ये संवर्ण और निर्जरा की बात उठाई है, तो हम देखेंगे अभी क्या क्या कहते।
देखो यहाँ तो गुजराती केवल पढ़ते हैं इसका श्लोकार्थ, दोबारा पढ़ते हैं। परम संवर रागादि आश्रवों ने रोकवा थी, पोतानी कार्यधुरा ने धारण करी ने। उसकी कार्यधुराई क्या है? वो रागादि आश्रवों को रोका है और नए कर्मों का बंधन वो मिटा दिया, उसने रोक दिया है। इटले पोताना कार्य ने बराबर संभाली ने, समस्त आगामी कर्म ने अत्यंतपने दूर थी ज रोकतो उभो छे। यानी कर्म आ ही नहीं सकते, आगामी कर्मों को रोक दिया ने भी वहां कर्म आएंगे ही नहीं,
क्योंकि वो राग द्वेष नहीं कर रहे हैं ना।
आ रहे और रोक दिया ऐसा नहीं है, आने योग्य कर्मों को उसने रोक दिया है। अने जे पूर्वे एटले संवर थया पहला बंधायेलू कर्म छे तेने बाळवाने हवे निर्जरा एटले निर्जरा रूपी अग्नि फैलाय छे, के जेथी वो निर्जरा रूपी अग्नि से क्या हो रहा है, वो पूर्वबद्ध कर्म भी सब निकल जा रहे, उसकी निर्जरा हो रही है। ज्ञान ज्योति निरावरण थई थकी, यानी आवरण रहित होती हुई फरी ने रागादि भावों वड़े मूर्छित थती नथी, सदा अमूर्छित रहे छे। यानी जो ज्ञान है अभी उसका वो राग रहित सदैव है। राग से पहले एकमेक था मिथ्यात्व अवस्था में, अब राग से बिल्कुल जुदा हो गया है,
भेद ज्ञान किया ना उसने,
भेद ज्ञान हुआ है ना उसको। अभी यहाँ साधक को भी ले सकते हैं और बाद में पूर्ण निरावरण केवल ज्ञान को भी ले सकते हैं।
देखो यहाँ और एक बात देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा कहा है कि उसने कर्मों को दग्ध कर दिया निर्जरा। बात तो ऐसी है, यह तो जीव के परिणाम है और कर्म तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है। क्या जीव कर्मों का कुछ कर सकेगा? क्या कर्मों को रुका पाएगा? कर्मों को जला देगा? कर्मों को नष्ट करेगा? तो ये तो कथन पद्धति है। वास्तव में यह जीव क्या कर रहा है, तो कहते तो ज्ञान ज्योति निरावरण थी। तो ये निरावरण कैसे हो रही कि जैसे अपने स्वरूप में एकाग्र होना यही उसका काम हो रहा है निर्जरा में। निर्जरा में तीन प्रकार बताए ना, तीन बातें होती है। क्या क्या होता है? जो अपने में जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, अशुद्धता मलिनता जो हो रही थी वो रुक गई। और ये तो वहां द्रव्य जो होता उसका जो आश्रय हो रहा था वो रुक गया। तो द्रव्य का जो कुछ कार्य है वो द्रव्य का मतलब कर्म का कर्म में हो रहा है, जीव कुछ उसको नहीं कर सकता है। और ये जो अशुभ यानी मलिनता जो के परिणाम है उसको भी वो दूर नहीं कर सकता है। तो उसने किया क्या? वह तो अपने स्वरूप में एकाग्र रहा, ख्याल में। तो वो स्वरूप में एकाग्र रहने का कार्य इसका है। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई यानी अफर्मेटिव कि स्वरूप में एकाग्र हुआ। वहां निगेटिव क्या हुआ कि उसके जो मतलब खोटे राग द्वेष के परिणाम थे वो बंद हो गए रुक, और वहां कर्मों का रुक गया, कर्मों का आना वगैरह। तो यहां कर्मों का तो जीव कुछ करता ही नहीं, ये बात पहले ध्यान में रखे। और जो विभाव भाव रूप जो परिणाम हो रहा था उसको भी वो कुछ नहीं कर सकते कहेंगे, क्योंकि वो कम हो गए ना भाई, कर क्या रहे हैं? तो अपने स्वभाव में एकाग्रता। तो देखो ये निर्जरा में तीन बातें हमने बहुत पहले देखी थी, अगर आपको याद होगी तो। अभी देखो क्या कह रहे हैं यहां पर कि ये जो संवर है उसका कर्म क्या है, कार्य धुरा क्या है? तो कहते हैं पुराने अभी नए कर्मों को आने ही नहीं देना, उसको संभालते संभालते अभी आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्वे जे संवर्धन बंधायेलो कर्म छे तेने बाड़वाने। ये क्या, ये कोई जीव दूसरे कर्मों को जला सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो कर्मों का जो कुछ बंधना छूट जाना कम होना निर्जरित हो जाना वो अपने अपने कारण से स्वयं में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होगा। वहां यहाँ जीव के जो परिणाम है उस निमित्त से उनमें जो कुछ हो रहे सो हो रहे, जीव उसको कुछ नहीं करता, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कहेंगे निर्जरा એટલે निर्जरा रूपे अग्नि फैलाई छे। अग्नि फैलाई छे यानी कि इसका ज्ञान का उघाड़ हो रहा है। यहां निरावरण किया ना, ज्ञान ज्योति निरावरण थई तकी। तो अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं, वो अभी निरावरण होते जा रही है। तो कहते हैं कि ऐसे होते समय अभी जो पहले राग की उत्पत्ति होती थी और इसमें वो अटकता था, जाके उसमें चिटकता था, वो अभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी उसने तो बिल्कुल ऐसा स्वरूप में एकाग्रता की ठान ली है कि रागादि भाव वड़े फरी मूर्छित थती नथी कौन, के ज्ञान ज्योति हवे सदा अमूर्छित रहे छे। ये इन्होंने निर्जरा के लिए, निर्जरा अधिकार शुरू हो रहे ना, तो उसके लिए अमृत चंद्राचार्य ने ये बहुत बढ़िया कलश दिया है यहाँ, और उसको बहुत सुंदर रीति से सम्यक ज्ञान की यहाँ तारीफ की है। लिखा ना, अबे ऊपर लिखा ना, यथार्थ जाननारू जे सम्यक ज्ञान छे तेने मंगल रूप जानी ने। किसकी ये महिमा है? सम्यक ज्ञान की। आचार्य देव मंगल अर्थे प्रथम तेनेज एटले निर्मल ज्ञान ज्योति नेज प्रकट करे छे, यानी उसके बारे में बता रहे। अब जैसे जैसे वो अपने स्वरूप में एकाग्र होकर बाहर आते होंगे तो उनको उनकी उस बात की ही महिमा लगेगी ना, तो इसलिए कहते कि निर्मल ज्ञान ज्योति ने ज प्रकट करे छे। अब भावार्थ आप पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ू?
संवर थया पछी नवा कर्म तो बंधाता नथी। हाँ, उसी की बात है। जैसे आपका कहना है चौथे गुणस्थान में जीव आया तो उसके 41 प्रकृतियों का बंधन रुक गया, भी मिथ्यात्व का बंधन ही है, अनंत अनुबंधी का बंधन ही है, आदि जो चीजें हैं तो उसका बंध उसका रुक गया है, तो उसको कहते हैं कि नवा कर्म तो बंधाता नहीं। परंतु उस गुणस्थान में जो कोई है वो उसका तो बंध है, फिर भी अनंत अनुबंधी का नहीं है तो है ही नहीं, ऐसा भी कहेंगे
वो। यहाँ तो द्रव्यान्यो खेल रहे ना भाई, तो वहां तो कहेंगे वो बांधता ही नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं फुटकल जो है उसको बांधे नहीं, ऐसा कह रहे। जो मुख्य मुख्य मेन था होलसेलर कौन, अनंतानुबंधी, वो सारे खत्म।
पहले कहा ना अभी राग वेश मोह है ही नहीं, ऐसा कहेंगे है ही नहीं। वो अनंतानुबंधी वाला जो था जिसके साथ एकत्व बुद्धि भी हो रही थी वो अभी है ही नहीं है, अभी कमजोरी वैसा जो थोड़ा बहुत है
वो नहीं बराबर। हाँ,
किसी के तीन कषाय चौकड़ी अभी विद्यमान है, किसी के दो, किसी का एक, तो उसके बाद अभी करेंगे आगे। क्या कहते संवर थया पछी नवा कर्म तो बंधाता नथी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं बन रहे तो बंधाता नथी ऐसे कहेंगे। जे पूर्वे बंधाया हता ते कर्मो जारे निर्जरे छे त्यारे ज्ञाननु आवरण दूर थवाथी ज्ञान एवं थाय छे के फरीने रागादि रूपे परिणमतु नथी। देखो अकेला मिथ्यात्व निकल गया, अनंतानुबंधी गया, ऐसे ही बात नहीं है। ये सभी कर्मों की, आयु को छोड़ो अलग, परंतु सभी कर्मों की निर्जरा होती है। पहले बांधे थे मिथ्यात्व अवस्था में, एक समय प्रबुद्ध ने अनंत परमाणु का एक गट्ठा एक लॉट लेता है और करीबन उतना ही उसका खिर जाता है, यानी एक समय प्रबुद्ध बनता है और एक समय प्रबुद्ध खिरता है। परंतु जब ज्ञानी होता है तो समय प्रबुद्ध तो एक ही बनता है, अभी जो बनने योग्य कर्म प्रकृति उसका, परंतु खिरने में तो वो उसकी असंख्यात गुणा उसकी निर्जरा चलती है। इसलिए यहां कहते हैं जारे निर्जरे छे त्यारे ज्ञान नु आवरण दूर थवाती। अभी ज्ञानावरण भी बहुत मंद हो रहा है और यहाँ सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है और उसकी दृढ़ता भी बढ़ती चली जाती है। ज्ञान एवं थाई छे के फरीने रागादि रूपे परिणमतु नथी। अब वो फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाएगा वो बात यहाँ नहीं करना, क्योंकि उसकी दृढ़ता है ना और बारम्बार वो स्वरूप का अनुभव करता है और वो संवर है, वहां पर संवर छूट नहीं गया है, इसलिए वो दोबारा वो उसने जो भेद ज्ञान कर लिया है राग के साथ, तभी वो दोबारा उसके साथ मिलेगा नहीं। उसको कहते हैं फरीने रागादि रूपे परिणमतु नथी, सदा प्रकाश रूप ज रहे छे, यानी सदा वो ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञाता रूप ही रहता है, ज्ञायक रूप से ही विराजमान रहता है। हवे द्रव्य निर्जरानु स्वरूप कहते, ऊपर की गाथा पढ़नी है हमको?
नहीं, अभी ये हम पहले इधर आएंगे।
कहाँ पर?
पेज नंबर 3 पर से चालू करते हम।
अच्छा, हाँ, प्रवचन पहले लेते हैं।
यहाँ निर्जराधिकार बोल्ड अक्षर में लिखा है ना, उसके आगे से हवे निर्जराधिकार कहे छे, त्या संवर पूर्वक, पहले में पहले क्या बताए, निर्जरा किसको होगी? तो मिथ्या दृष्टि को निर्जरा होगी कि नहीं? तो ये टाइप की निर्जरा नहीं है, वो तो कर्म जो स्थिति पूरी होगी वो निर्जरित हो गए, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। ये तो मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ हुए हैं ऐसे जीवों की अपेक्षा से बात है।
इसको संवर पूर्वक की निर्जरा कहते हैं।
हाँ।
और वो ऑर्डिनरी निर्जरा।
हाँ। यानी बिना काम के।
हाँ? काम निर्जरा वो तो और जुदी,
वो जुदी ये बात नहीं है।
हाँ। ये तो शांति से कोई सब विपक कह सकते उसको। हाँ, मिथ्या दृष्टि की बिना संवर वाली,
यानी हाँ। वहां तो देखो आपने समझ लीजिए कि कोई घर लिया है लीव एंड लाइसेंस पे, तो आपको तो 11 महीने के बाद वो खाली करना ही है। वैसे ये कर्म जो आपने बंधे बांधे हैं उनका भी एक ड्यूरेशन है, एक स्थिति है, वो होने के बाद वो कर्म उदय में आएंगे ही आएंगे, तो वो उसकी स्थिति पूर्ण हो गई। तो स्थिति पूर्ण होती है ऐसे, क्योंकि हमने देखा था कोई भी कर्म अनादि अनंत होता ही नहीं है, उसके आदि भी है और उसके अंत भी है कोई भी कर्म का, लेकिन वही वैसे के वैसे कर्म ये निरंतर बांध रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये कर्मों के साथ अनादि से यह जीव है। तो वही कर्म नहीं है, वैसे के वैसे नए 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 कर्म आ रहे हैं और वो झड़ भी रहे हैं, नए नए बंध भी रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं निर्जरा अधिकार में, वहां क्या हो रहा है, ये संवर पूर्वक की बात चल रही है। यानी जीव ने देखो हमने पहले देखा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ स्वामी जी भी कहेंगे कि संवर किसको कहना, तो कहते शुद्धि की उत्पत्ति। निर्जरा किसे कहना, तो कहते शुद्धि की वृद्धि। मोक्ष किसे कहना, तो कहते परिपूर्ण शुद्धि होना। और वहां कर्मों की बात कहेंगे तो नए कर्मों का आना रुक जाना और पुराने कर्म जो है उसको झड़ जाना और सारे कर्मों का नाश हो जाना, ये द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, इस तरह हमने देखा था। इसी बात को यहाँ पर भी बताएंगे। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ लिख रहे हैं कि त्यां संवर पूर्वक शुद्धतानो नाश, अशुद्धतानो नाश थवो। बराबर ऐसे ही मौके पे मैं गलती करता हूँ। हाँ, क्या कहा? संवर पूर्वक क्या हो गया? अशुद्धता का नाश हुआ है। हाँ? यानी ये जीव क्या अशुद्धता का नाश कर सकता है, ऐसा भी लेना? हाँ? अरे अपने जो विभाव परिणाम है उसका भी ये नाश नहीं करता है। अगर नाश करना यह उसका कार्य हुआ तो हमेशा उसको विभाव होगा ही होगा, नहीं तो नाश क्या करेगा? ख्याल में आया? तो ये तो कहने की बात है। जैसा हम कहते हैं यह जीव शरीर आदि का और कर्मों का कुछ नहीं कर सकता, वैसे यहां कह रहे कि जो विभाव भाव है उसका भी आगा पीछा, मतलब उसको आगे पीछे करना, कुछ करना ये बात नहीं। फिर भी कहेंगे उसने क्या किया? अशुद्धता का नाश किया। ये तो नेगेटिव बात हुई। तो किया क्या उसने, तो बताएंगे। शुद्धता नि वृद्धि थवी, ये पहला पॉइंट कौन सा? कि अशुद्धता नो नाश थवो अने शुद्धता नि वृद्धि थवी, ये शुद्धता की वृद्धि यह जीव करेगा। अने ते काड़े द्रव्य कर्म नु स्वयं खरी जवू। अभी क्या लिखा? द्रव्य कर्म नो नाश करवो, ऐसा नहीं लिखा। द्रव्य कर्म नु स्वयं, यानी वो पुद्गल जो है वो उसका ही ऐसा परिणमन हो गया, वो खत्म हो गया, यानी जो कर्मरूप था वो अकर्मरूप हुआ। इसलिए कहते ते काड़े, यानी ये तीनों को एक ही समय में बात हो रही है। कहने में भले अधिक समय लगे लेकिन तीनों ही बातें एक समय में हो रही है। क्या? कि जीव के जो अशुद्ध परिणाम थे उनका नाश, शुद्ध परिणामों की वृद्धि और द्रव्य कर्म का झड़ जाना। तो कहते द्रव्य कर्म नु स्वयं खरी जाऊं एटले निर्जरी जाऊं तेने निर्जरा कहे छे। ये तीनों को मिलकर निर्जरा कहा, या तीन, अब हम उनके तीन प्रकार करेंगे। चलो अभी कहते निर्जराना त्रण प्रकार, तो एक पॉइंट दिया आत्मज्ञान तथा स्वरूपमा रमणता थवा वड़े जे द्रव्य कर्मनो नाश थाय छे ते द्रव्य निर्जरा छे। यहाँ द्रव्य निर्जरा होना, यह स्वयं द्रव्य निर्जरा मतलब कर्मों के अपने उपादान शक्ति से उनका निर्जरित हो जाना, यानी यहाँ से हट जाना समझ लो, या जो कर्म थे वो अकर्म रूप होना वो अपने स्वयं के कारण से, उसमें निमित्त क्या है? तो कहते जीव के स्वरूप में रममानता जो है, स्वरूप के अंदर जो स्थिरता की है वह जीव के परिणाम, वह निमित्त, और यहाँ कर्मों का झड़ जाना यह वह कार्य हो रहा है, ते द्रव्य निर्जरा छे। और दूसरा पॉइंट क्या है? त्यारे जे अशुद्धतानो नाश थाय छे। अभी इन्होंने क्रम बदल दिया, पहले क्रम जुदा था, पहले अशुद्धता को लिया था और फिर बाद में शुद्धता को लिया, यहाँ तो और क्रम बदल दिया। तीनों ही बातें वही है। मैं कल पूछने वाला हूँ ये तीन बातें क्या है। हाँ हाँ, हमारे वीरेश भाई ने तो अब भी याद कर लिया। त्यारे जे अशुद्धता नो नाश थाय छे ते भाव निर्जरा छे। आ नास्ति थी निर्जरा नु स्वरूप छे, ये भाव निर्जरा में भी एक अस्थि से और एक नास्ति से, ऐसी दो बातें बताई। अने तीसरा पॉइंट जे शुद्धता नी वृद्धि थाय ते अस्थि स्वरूप थी भाव निर्जरा छे। दोनों को भाव निर्जरा का, क्या? अशुद्धता का नाश होना और शुद्धता का बढ़ना। क्या कहा? देखो शुद्धता नी वृद्धि थाय छे ते अस्थि अते अस्थि स्वरूप थी भाव निर्जरा छे। शुद्धोपयोग ते भाव निर्जरा छे। अब ये तीन बातें कौन बता पाएगा? मम्मी आप बता रही हैं? हाँ बरोबर। हाँ तो उसको एक निर्जरा का द्रव्य निर्जरा, हाँ अभी हाँ वगैरह चश्मा पन दिखाई थी तुमने बहुत सारू। हाँ और तीसरी बात कौन सी? ते कई निर्जरा। अच्छा बहुत सरस। देखो भाव निर्जरा के दो भेद हमने देखे ना, एक अस्थि से कथन किया हुआ, एक नास्ति से कथन किया हुआ। तो अस्थि का कथन कौन सा होगा मिली भाई? बरोबर शुद्धि निवृद्धि। और नास्ति से अशुद्धता का नाश होना। और वहां ये परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म जो है वो निर्जरित हो जाना, वो उसका उसका कार्य है भाई। उसमें जीव कुछ नहीं कर सकता है, कहेंगे जरूर कि जीव ने उसका नाश किया। अभी कल तक याद रखने की जरूरत है कि आज हो गया कि नहीं? हाँ ये जो हम देख रहे हैं ना, उसको दो दिन बार हम आगे पीछे करके समझेंगे। ये तो बहुत हम सात तत्व सीखे थे, जबकि ये बात याद होनी है। अब कहें जे कर्मनो नाश थाय छे ते स्वयं तेना कारणे थाय छे। क्या कहा? कर्म का जो नाश हो रहा है वो उसके स्वयं के कारण से हो रहा है। ते काई वास्तविक निर्जरा नथी, जीव से उसका कोई संबंध नहीं। पर्याय मा अशुद्धता नो नाश थई शुद्धि नी वृद्धि थवी ते वास्तविक निर्जरा छे। यानी वो जो कर्म झड़ गए वो निर्जरा से इस जीव का क्या फायदा होने वाला है? वास्तविक क्या है? शुद्धि की वृद्धि हुई। फिर वो शुद्धि की वृद्धि कब हुई? अशुद्धता का नाश किया और शुद्धि की वृद्धि हुई, दोनों एक समय में हो रहे। फिर वो वास्तविक निर्जरा है। संवर एटले आत्मा मा शुद्धि नी उत्पत्ति थवी अने निर्जरा एटले शुद्धि नी वृद्धि थवी। आत्मा मा शुद्धि नी उत्पत्ति थाय ते संवर, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તે નિર્જરા, અને શુદ્ધિની પૂર્ણતા થવી તે મોક્ષ છે। યા ગઈ ના વાત અભી જો હમને બરસો સે સીખી હૈ વહી વાત હમકો યહાં બતા રહે હે। હા છે ને। હવે અહીં પંડિત શ્રી જયચંદજી મંગલાચરણ कहे छे, रागादी नारोदती नवो बंदहनी सन
पूर्व उदय मासमारहे नमो निर्जरावंत।
ये निर्जरावंत यानी निर्जरा सहित जो जीव है, निर्जरा धारण करने वाले, जैसे हम कहते हैं बहुत पुण्यवंत जीव है यानी पुण्यशाली है, वैसे निर्जरा जिन्होंने की है वैसे निर्जरावंत। पुण्य पापना भाव में रोकवा थी नवो रोकावा थी बंद थाय छे। अरे पुण्य पापना भाव में रोकावा थी नवो बंद थाय छे। संत कहता साधु पुरुषो शुभाशुभ भावनो निरोध करीने नवा बंधने हणी दे छे, एटले अटकावे छे, अने पूर्वना उदयमा सम एटले समता भावपने रहे छे, आनु नाम निर्जरा छे। पंडित श्री जयचंद जी कहे छे, आवा निर्जरावंत संत पुरुषो ने हूँ नमस्कार करूँ छू। હવે પ્રથમ ટીકાકાર આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે હવે નિર્જરા પ્રવેશ કરે છે, અહીં તત્વોનું નૃત્ય બતાવવું છે ને, આમાં આત્મા શુદ્ધપણે પરિણમે તે સંવર તત્વનું નૃત્ય છે, અને શુદ્ધિની વૃદ્ધિપણે પરિણમે તે નિર્જરા તત્વનું નૃત્ય છે। તેથી कहे छे, जेम नृत्यना अखाड़ा में नृत्य करनार स्वांग धरी धारण करीने प्रवेश करे छे, तेमय रंगभूमि में निर्जरानो स्वांग प्रवेश करे छे। भाई आज एटली पर्याय छे તે બધી જુદા જુદા સ્વાંગ છે. યાને અભી તક હમને દેખા ના કે કરતા કર્મ આશ્રવ યે સબ યે ક્યા હૈ ઉસકે સ્વાંગ હૈ. હવે સર્વ સ્વાંગને યથાર્થ જાણનારું જે સમ્યક જ્ઞાન છે તેને મંગળરૂપ જાણીને આચાર્યદેવ મંગળ અર્થે પ્રથમ તેને જ એટલે નિર્મળ જ્ઞાન જ્યોતિને જ પ્રકટ કરે છે. હવે શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. પરહ સંવરહ પરમ સંવર રાગાદી આશ્રવ રોધતઃ. રાગાદી આશ્રવોને રોકવાથી નિજ ધુરામ ધૃત્વા પોતાની કાર્યધુરાને ધારણ કરીને સમસ્તમ આગામી કર્મ સમસ્ત આગામી કર્મને ભરતઃ દૂરાત એવ અત્યંતપણે દૂરથી જ નિરુંધન સ્થિત રોકતો ઉભો છે. શું કહ્યું? આત્મામાં રાગનો અભાવ થઈને વિતરાગી પરણતીને થમું પરણતીનું થમું તે પરમ સંવર છે. યાને ઉન્હોને દોની બાતે બતાઈ કે રાગ કા અભાવ હુઆ ઓર શુદ્ધતા કી ઉત્પત્તિ હુઈ વિતરાગી પરણતીનું થમું. ભાઈ આ વિતરાગી માર્ગ છે અને તેથી એમાં આત્માના આશ્રય જેટલી વિતરાગ પરિણતિ પ્રકટ થાય છે તેને સંવર નામ ધર્મ કહે છે. આશ્રવને રોકતા સંવર થાય છે. કોઈ પંચમહાવ્રતના પરિણામને ધર્મ સંવર કહે તો તે બરાબર નથી, કેમ કે એ તો આશ્રવ ભાવ છે. પુણ્યના સઘળા પરિણામ આશ્રવ છે અને બધાય રાગાદી આશ્રવોને રોકવાથી સંવર થાય છે. દેખો કહાં સે કોન સી બાત ઉન્હોને કન્વિન્સ કી હૈ. યહાં પર સ્વામીજી સમજા રહે હૈ, કઈ લોગ તો એસા માનતે હૈ કે જો પંચમહાવ્રત પાલન કરને કે પરિણામ હૈ વહી ધર્મ હૈ વહી સંવર હૈ વહી શુદ્ધિ હૈ. તો કહે રહે ભાઈ વૈસી બાત નહીં હૈ, ક્યુંકે સંવર કબ હોતા હૈ કે આશ્રવ કો જબ રોકા જાતા હૈ. ઓર યહાં તો તું આશ્રવ સે હી ધર્મ માન રહે. બાત ખ્યાલ મેં ગઈ? હા ક્યાં કહા? દેખો ફિર સે થર્ડ લાઇન સે પડતો હું. આશ્રવને રોકતા સંવર થાય છે. યે મૂળભૂત પ્રિન્સિપલ હમારે ખ્યાલ મેં હોના ચાહિએ. સંવર કબ હોતા હૈ તો કહેતે આશ્રવ. યે આશ્રવ કિસકો કહા? કે આત્મા મેં જો રાગ દ્વેષાદી જો ભાવ હો રહે તો પહેલે લાઇન મેં ક્યાં લિખા થા કે આત્મામાં રાગનો અભાવ થઈને એટલે આશ્રવોનો અભાવ થઈને વિતરાગી પરિણતિનું થમું. તો વહાં તો આશ્રવ હૈ હી નહીં ઉસ પર્યાય મેં. તો યહાં નીચે બતા રહે કે આશ્રવને રોકતા સંવર થાય છે. યે મૂળભૂત પહેલે ડાટા દિયા આપને હાથ મેં. અબ કહેતે કોઈ પંચમહાવ્રતના પરિણામને ધર્મ એટલે સંવર કહે તો તે બરાબર નથી, કેમ? કેમ કે એ શું પંચમહાવ્રતના પરિણામ કે કયા ભાવ છે? પાપ ભાવ છે, પુણ્ય ભાવ છે કે શુદ્ધ ભાવ છે? હા બેન, શુભ ભાવ છે ને, પુણ્ય પરિણામ છે. તો એ આશ્રવ છે કે નહીં? તો એનાથી ધર્મ કેમ થાય એમ કહે છે. એ બિલકુલ મતલબ એક એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હમકો સમજા રહે. એટલે કહે રહે સંવર કહે છે તે બરાબર નથી, કેમ કે એ તો આશ્રવ ભાવ છે. પુણ્યના સઘળા પરિણામ આશ્રવ છે અને બધાય રાગાદી આશ્રવોને રોકવાથી સંવર થાય છે. એને થોડે અચ્છે પાપ પરિણામ કો છોડ દો, પુણ્ય કો રખો નહીં. સઘળા શું કીધું? પુણ્યના સઘળા પરિણામ આશ્રવ છે.
દેખો યે લોગો કી ક્યા માન્યતા હૈ, જબ પુણ્ય પરિણામ કર રહે હૈ તો પુણ્ય પ્રકૃતિ બનતી હૈ, પાપ પ્રકૃતિ ઉસ કાલ મેં નહીં બનતી. તો ઉનકા કહેના હૈ દેખો યહાં પાપ કા સંવર હો ગયા ના, આશ્રવ રુક ગયા હૈ, તો ક્યા ઉસકો હમ સંવર માનતે હૈ? યદિ ઉસકો સંવર માનેંગે તો જબ પાપ કર રહા થા તો ક્યા હો રહા થા? પુણ્ય કર્મ વો નહીં આતે થે, તો પુણ્ય કા આશ્રવ હુઆ એસા માનના, યાનિ સંવર હુઆ એસા માનના પડેગા, હૈ ના? તો જબ તક મિથ્યાત્વ કા આશ્રવ ચાલુ હૈ, મિથ્યાત્વ અનંતાનો મંદિર તો ચલ રહા હૈ, ક્યુંકિ મિથ્યા દૃષ્ટિ કિતના ભી પુણ્ય પરિણામ કરે तो मिथ्यात्व का बंध तो नहीं रुकता है, आश्रव भी नहीं रुकता है, बंध भी नहीं रुकता है। तो जब तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का निरोध नहीं हुआ है, उसका संवर नहीं हुआ है, तब कितना भी पाप और पुण्य पलटता रहे तो उसको अभी संवर हुआ ही नहीं, ऐसा कहेंगे। यही मान्यता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और फिर पंच महाव्रत अंगीकार करता है और मान लेता है हमारा संवर शुरू हो गया, परंतु ये उसकी मान्यता ही गलत है, यही बात यहाँ कह रहे हैं। देखो कि पुण्यना सगड़ा परिणाम आश्रव छे। तो जिस जो सम्य दृष्टि है, मुनिराज है, और उसके जो 28 मूल गुण के भाव है, पुण्य परिणाम है, वो आश्रव है कि संवर है? उनके भी आश्रव ही है। अने बधाय रागादि आश्रवों ने रोकवाती संवर थाय छे, एम कहे छे। पुण्य हो या पाप हो, रागादि का रुकना ही वो संवर कहलाएगा।
आवो संवर पोतानी कार्य धुरा ने धारण करे छे। ये संवर की कार्य धुरा क्या है वो बताएंगे अभी। अर्थात पोताना कार्य ने, कार्य ने एटले फरज ने, एटले कर्तव्य बराबर संभाळे छे। जेम पगारदार मानस ने तेनी ड्यूटी एटले फरज होय छे ने, तेम संवरनी आ ड्यूटी एटले फरज छे के शुद्ध चैतन्य स्वभावनी दृष्टि पूर्वक पुण्य पापना भावने रोकीने निर्मल वीतराग परिणति प्रकट करवी। संवरनी आ कार्यधुरा छे, अने संवर पोतानी कार्यधुरा ने बराबर संभाळे छे एटले एनी फरज बराबर बजावे छे। कहे छे के समस्त आगामी भविष्यना कर्म ने अत्यंतपने अतिशयपने दूर थी ज रोकतो संवर उभो छे, और ये इसकी कार्य धुरा है। आ संवरनी मोटप छे के ते मिथ्यात्वना परिणाम ने अने नवा कर्म ने समीप आववा देतो नथी। जेमां सम्यक दर्शन ज्ञानी निर्मल वितराग परिणति प्रकट थई, ते संवर महान छे, महिमावंत छे। कलष्टिकामां एने संवरनी मोटप कही छे। आवी पोतानी मोटपने यथावत जाळवीने नवा समस्त कर्मने रोकतो संवर उभो छे। यही उसका कर्तव्य है, कहते उसकी फरज यही है। शुद्ध चैतन्य में भगवान आत्मानी दृष्टि थता, अर्थात राग थी भेद करीने शुद्ध चैतन्य नी जागृत दशारूप अनुभव करता जे संवर प्रकट थयो, ते पोतानी कार्यधुरा ने सावधान रही सांभळतो उभो छे। संभळतो उभो छे अने तेने हवे नवा कर्म आवता नथी। भरत दूरात एव निरुंधन, नवा कर्म ने अतिशयपने दूर थी ज रोकतो संवर उभो छे। आहा, संवर प्रकट थता कर्म एटले आश्रव अत्यंतपने रोकाई जाय छे। आ संवरनी मोटप कहता महिमा छे, लोकमां आ शेठ छे ए महिमा कहे छे ने, तेमां नवा कर्म ने दूर थी ज अतिशयपने रोकनार संवर छे एम कहीने संवरनो महिमा करे छे। आश्रवने एटले मिथ्यात्वने न थवा दे एनु नाम संवर छे। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। अने ते संवर पोतानी कार्यधुराने बराबर संभाळतो उभो छे, प्रकट विद्यमान छे। हवे आवी वात ने आवी भाषा बापा मार्ग जा छे। रागती भिन्न पोताना स्वरूपनुं भान नथी, तेने संवरने धर्म क्यांथी थाय? क्या कह दिया? देखो देखो देखो, ये क्या कहते लोग, क्या अन्य मतियों को सम्यक दर्शन नहीं होता है? तो यहां क्या बताया कि रागती भिन्न, क्या कहा कि रागती भिन्न पड़ी ने जेने अंतरमां भेद ज्ञान प्रकट कर्युं, यानी मैं राग रहित हूं ऐसा कोई मानता होगा? ऐसा हम प्रश्न करें, ख्याल में है ना? ये अन्य मति की बात चल रही है, वो तो राग करना ये तो पुरुषार्थ मानते हैं। देखो जो संस्कृत में जितने सारे क्या कहते हैं कादंबरी आदि मतलब कथा है ना, उसमें जो कोई हीरो रहता है उसको बहुत क्रोधी दिखाया है, क्रोधी कहो या कसाई कहा, और वो कोई भी चीज के पीछे लग गया तो बस उसको पूरा किए बिना नहीं रहता है। जैसे आपने शेक्सपियर के अथेलो देखा होगा, उसमें तो उसको बहुत ही क्रोधी बताया और ये इनके हीरो हैं। यानी वहां ऐसा ही मानते हैं कि जो अधिक विशेष मतलब उनके हिसाब से पुरुषार्थी है, क्रोधी है, कचाई है, वो हीरो के लायक है। जैसे हम आजकल के पिक्चर में देखते हैं अमिताभ बच्चन तो यंग एंग्री मैन, अभी बूढ़ा हो गया है पर एंग्री कम नहीं हुआ है। यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे कि राग ती भिन्न पड़ी ने, यानी राग रूप में नहीं हूं ऐसा जिसने जाना है, माना है और एक्सेप्ट किया है, तेने अंतर में भेद ज्ञान प्रकट करियो, अने शुद्ध स्वरूप नो आश्रय करियो, तेने राग नो आश्रय थतो नथी। राग आश्रवे नहीं, एटले आश्रवे नहीं यानी श्रवे नहीं, एम श्रवना समझते हैं ना आप, ये उजिंग होता है ना इसे वो श्रवना, तो राग आश्रवे नहीं एटले मिथ्यात्व आवे नहीं, ए संवरनु मुख्य कार्य छे। क्या कह रहे देखो, अरे लोको तो राग कर्म ने लईने थाय छे एम माने छे, हमने कर्म बांधे इसलिए हमको क्रोध आ रहा है ऐसा कहते हैं, या प्रेम हो रहा है जो भी है, पन भाई राग भावनु थवुं ते आत्माना उंदा पुरुषार्थती छे, अने तेनु न थवुं ते आत्माना सवळा पुरुषार्थती छे, अने ते सवळो पुरुषार्थ कर्म थी ने राग थी भिन्न पड़े त्यारे थाय छे। देखो यहां क्या बात बताना चाहते हैं कि ये जीव का पुरुषार्थ सही रूप से कब कहा जाएगा, तो ये राग से मैं जुदा हूं, कर्म से मैं जुदा हूं, ऐसी जो वस्तु स्थिति है उसको एक्सेप्ट करे कहो, या उसको जो पर्याय में उसकी रचना करे कहो, वही तो वीर गुण का कार्य है। और ये जानने में मानने में कबूल करने में अनंत पुरुषार्थ लगता है, तो वह तो इसी का कार्य है, किसका, वीर गुण का। क्या कहा देखो देखो, ये थर्ड लाइन में है, अने ते सवड़ो पुरुषार्थ कर्म थी ने राग थी भिन्न पड़े त्यारे थाय छे, यानी राग से भिन्न पड़ना ये भी सवड़ा पुरुषार्थ है। आप डरो मत, वो जैन घर का है, वो जानती है, वो अपने को भी कुछ नहीं करेगा और अपन भी उसको कुछ नहीं करेगा, जानो देखो, पर शास्त्र की तरफ भी जरा जानो, ऐसा मैं कहता हूं। वो बहुत टाइम से घूम रहे हैं वो पहले पीरियड से, लेकिन जब भी किसका ख्याल नहीं था। हाँ, हम रात को भी हमारे पेट से निकल जाते हैं, चिंता नहीं करो। हाँ, देखो इतना छोटा सा कीड़ा है वो क्या है, जो भी होगा, हाँ मकोड़ो छे। हाँ, और वन में जो आचार्य भगवान या कोई मुनि महाराज वहां तप में बैठे होंगे तो कितने कौन कौन जाता होगा आसपास से उनके, कम से कम कोई नहीं तो नहीं लोमड़ी वुल्फ फॉक्स छोटे छोटे भी जाते होंगे कि नहीं। हाँ, अरे शास्त्र में तो ऐसा कथन आता है, मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि ये ऐसे निश्चल बैठे हैं और वहां हिरण जाके पांठ खुजलाते हैं उनके शरीर से, कि उसको लगता है ये पत्थर ही है, और फिर भी वो अपने स्व में जो एकाग्र हुए उससे वो विचलित नहीं होते हैं। ये भय की जो ये है ना, तो चालू ही है उसका उदय। अब आगे अभी किसी को हाथ में आवे तो उठा के फेंक देना, काटेगा नहीं, घबराना मत। हाँ, यहां मूल बात क्या बता रहे हैं कि राग से और कर्म से भिन्न जब हमें अपने स्वयं को मानूंगा और उस रूप अनुभवूंगा तभी वो पुरुषार्थ होगा, सही पुरुषार्थ। अरे भाई, जो राग कर्म ने लईने थतो होए तो कर्म खसे त्यारे संवर थाय, अने तो जीव राग ने टाळे त्यारे संवर थाय, एम वात रहे ज नहीं। परंतु एम नथी, राग थी भिन्न पड़ी अंतः पुरुषार्थ करे त्यारे संवर प्रकट थाय छे। आ प्रमाणे आ संवरनी वात करी, हवे निर्जरानी वात ले छे। संवर पूर्वक निर्जरा होय छे, अर्थात जेने संवर होय तेने ज निर्जरा होय छे। ये बिल्कुल प्रिंसिपल ध्यान रखना हो। क्या कहा कि जिसके जिसके संवर होता है उन्हीं के निर्जरा होगी। संवर यानी आत्मा का अनुभव कहो या सम्यक्त्व कहो या धर्म की पहली सीढ़ी कहो, जो भी है हा? तो कहते हैं वो होगा उन्हीं के निर्जरा होगी। माटे अज्ञानी ने निर्जरा होती नथी, जेने राग ना विकल्पती भिन्न पड़ता शुद्धता नी प्राप्ति थई छे। देखो, यहां शुद्धता की प्राप्ति होने के लिए अल्टीमेट लास्ट स्टेज कौन सा बताया कि राग ना विकल्पती भिन्न थता तेने समर होय छे अने तेने निर्जरा होय छे। आई कहे छे तू अने प्राग्बद्धम जे पूर्वे बंधायेलू कर्म छे तत एव दग्धुम तेने बाळवाने अधुना हवे निर्जरा वाज्रुंभते निर्जरा फैलाय छे। पूर्वे बंधायेला जे कर्म छे तेने बाळती निर्जरा देखाय छे। आई बाळवानो अर्थ ए छे के पुद्गलनी जे कर्मरूप पर्याय हती हवे निर्जरीने अकर्मरूपे थई जाय छे। कर्मनू अकर्मरूपे थवू ते कर्म पुद्गलनू कार्य पुद्गलमां छे, अने केवल ज्ञानादि शुद्धता थवी ते चैतन्यनू कार्य छे। तेथी घाती कर्म नाश थया माटे केवल ज्ञान थयुं वा केवल ज्ञान कर्मनू कार्य छे एम नथी। दोनों तरफ से लिया, यानी कोई लोग मानते कि कर्म ने जगह दी, कर्म हमने मोड़ा पड़ी जाए मार्ग आपे तो हमारो काम था है, ये सारी बात नहीं है। और ये जीव भी कर्म को कुछ नहीं करता है। जो आ निर्जरा ने व्याख्या करी करी छे के पूर्वे संवर थया पेला बंधायेला कर्मनो नाश करीने निर्जरा एटले आत्मानो शुद्धतारू परिणमनो फैलाय छे एटले वृद्धि पामे छे। आहा, चैतन्य प्रकाशनो पुंज अनंत चैतन्य प्रकाशनो सागर प्रभु आत्मा छे तेने पूर्वना कर्मोनो नाश करीने अर्थात पर्यायमां रहेली अशुद्धतानो नाश करीने। ये कर्म की बात कही है लेकिन यहाँ तो अपने स्वभाव अपने पर्याय में जो अशुद्धता है उसके नाश की बात कर रहे हैं। अशुद्धतानो नाश करीने पूर्ण शुद्धतानो प्रकाश ज्ञान ज्योति प्रकट थाय छे। हवे एज कहे छे, ये हम कर लेंगे अभी। हाँ, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनमो सदा देत हो। वीरेश भाई,